दिन भर 26 दिसंबर गुरुवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर बोले सेना प्रमुख जनरल रावत, प्रदर्शनों से हिंसा बढ़ी।
इन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स द वे दे आर लीडिंग मैसेस ऑफ क्राउड्स टू कैरी आउट।
क्या सेना प्रमुख का बयान नागरिकों के मामले में एक दखल है?
वो मिलिट्री के एक मेंबर हैं और मिलिट्री के सारे मेंबर्स को आर्मी रूल 19 के तहत उनके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किए गए हैं।
राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा आरएसएस का प्रधानमंत्री, बीजेपी ने किया पलटवार।
मुझे लगता है राहुल गांधी जी से भद्रता की अपेक्षा करना, राहुल गांधी जी से अच्छाई की अपेक्षा करना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, ये बहुत ज्यादा अपेक्षा करना।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कीर्ति दुबे से। भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि नेता वो होते हैं जो सही दिशा में लोगों का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट जिस तरह से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे शहरों में हिंसा और आगजनी बढ़ रही है। जनरल रावत के इस बयान की विभिन्न राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। भारत समेत एशिया में आज साल 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा गया। पृथ्वी के काफ़ी बड़े हिस्से में साफ दिखने के कारण इसे सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी कहा गया। अगला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू आज अपनी पार्टी के आंतरिक चुनाव का सामना कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से वह लिक्विड पार्टी के शीर्ष पर हैं। पार्टी के अंदर उनके प्रतिद्वंदी गिदोन सार से कड़ी चुनौती उन्हें मिल रही है। सार का कहना है कि आने वाले चुनाव में नेतन्याहू सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस साल हुए दो चुनावों में भी वो ऐसा नहीं कर पाए। पिछले साल नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन अभी भी उन्हें पार्टी से काफ़ी समर्थन मिल रहा है। वहीं वोट डालने के बाद गिदोन सार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। मैं देख सकता हूं कि मतदाता काफी जागरूक है। लोग इस बात को समझते हैं कि परिवर्तन की जरूरत है और ईश्वर चाहेगा तो मिलकर हम आज ये परिवर्तन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे लिक्विड पार्टी के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। ये थे लिक्विड पार्टी के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को चुनौती देने वाले गिदो सार के शब्द। फिलीपींस के प्रशासक का कहना है कि चक्रवाती तूफान फनफोन के कारण कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता है। देश में इस तूफान के कारण भारी तबाही मची है, कई घर टूट गए और सड़कें बंद हो गई हैं। इस तूफान से फिलीपींस की घनी आबादी वाले द्वीपों से होकर गुजर चुका है और अब दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रहा है। फिलीपींस में रेड क्रॉस के अधिकारी रिचर्ड गोर्डन ने कहा है कि अब जरूरी चीजों की कमी होने लगी है।
We never have enough, especially now with the earthquakes.
मैं लगभग 50 साल से रेड क्रॉस में हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जरूरत से अधिक सामान हो। पहले यहाँ दो भूकंप आए थे, हम प्रभावितों को खाना और अन्य चीजें भी बांट रहे हैं। फिर पिछले हफ्ते एक तूफान आया जिसने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। अब दोबारा एक और तूफान आ गया है। ये थे फिलीपींस के रेड क्रॉस के अधिकारी रिचर्ड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के प्रमुख विपक्षी नेता अलेक्सेई नावाल्नी के कार्यालय पर सुरक्षा बलों ने छापेमारी की। नावाल्नी का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उनकी टीम के सदस्यों ने रूस के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की फिल्म को हटाने से इनकार कर दिया। 2 साल पहले बनाई गई इस फिल्म को हटाने के लिए अदालत से भी आदेश आया था। इस संबंध में पिछले साल नावाल्नी के एंटी करप्शन फाउंडेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। रूस ने नावाल्नी की संस्था को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया है। नावाल्नी का दावा है कि छापेमारी के दौरान उन्हें घसीटा गया, हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अफगान अधिकारियों का कहना है कि उत्तर में स्थित बल्ख प्रांत में हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 6 सैनिकों की मौत हुई है और 3 जख्मी हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमलावरों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को सेना के ठिकाने के पास उड़ा दिया। 2 दिन पहले इसी प्रांत में सेना के नाके पर हुए तालिबान हमले में 7 सैनिकों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि तालिबान के लड़ाकों ने शांति समर्थक समूह पीपल्स पीस मूवमेंट के 27 सदस्यों को रिहा कर दिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नागरिकता संशोधन कानून पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर आज एक टिप्पणी की। 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे सेना प्रमुख ने ये टिप्पणी दिल्ली में की है। उन्होंने कहा,
लीडरशिप इज ऑल अबाउट लीडिंग, देयरफॉर व्हाट इज सो कॉम्प्लेक्स अबाउट लीडरशिप इफ इट इज ऑल अबाउट लीडिंग।
नेता को नेतृत्व से ही जाना जाता है। अगर आप प्रगति के रास्ते पर ले जाते हैं तो आपके पीछे हर कोई हो जाता है। नेता वही है जो लोगों को सही दिशा में ले जाता है। नेता वो नहीं होता जो अनुचित दिशा में ले जाए। हम देख रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें हिंसा और आगजनी हो रही है। ये कोई नेतृत्व नहीं है। ये थे थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के शब्द। सेना प्रमुख के इस बयान के बाद AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा,
By making such a statement, it is very unfortunate that he is undermining the Modi government. And please don't interfere in civilian matters.
इस तरह के बयान देकर दुर्भाग्य से वो मोदी सरकार को कमजोर कर रहे हैं और कृपया इस तरह के आम लोगों के मामले में दखल ना दें। ये सरकार के लिए है और प्रदर्शन करने का अधिकार एक लोकतांत्रिक अधिकार है। ये थे असदुद्दीन ओवैसी के शब्द। जनरल बिपिन रावत का इस तरह से बयान देना क्या नागरिकों के मामले में दखल देने के बराबर है और इस बयान के क्या मायने समझे जाने चाहिए, यही जानने के लिए मैंने रिटायर्ड कर्नल और रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला से बात की।
देखिए, एक फौज के तौर तरीके और नियम और कानून के मुताबिक जो आर्मी रूल बुक है उसमें आर्मी रूल 21 में साथ लिखा गया है कि नो पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट शैल पब्लिश इन एनी फॉर्म और कम्युनिकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द प्रेस एनी मैटर इन रिलेशन टू अ पोलिटिकल क्वेश्चन, यानी कि राजनीतिक सवालों के ऊपर कोई बयान पब्लिकली नहीं दिया जाएगा फौज के किसी भी मेंबर से। इसके लिए देने के लिए बयान देने के लिए केंद्रीय सरकार की परमिशन बहुत जरूरी है और ये रूल के मुताबिक लिखा हुआ है कि बगैर परमिशन के ये सीनियर ऑफिसर है या कोई भी फौजी इंसान बात नहीं कर सकता है। तो इस रूल के खिलाफ जनरल रावत ने ये बात की है। ये एक राजनीतिक सवाल है जो कि सारे हेडलाइंस आजकल खा रहा है इस देश में, और इसके ऊपर सवाल करना या बयान करना एक आर्मी चीफ के लिए सही है या गलत है ये लोगों के अलग अलग राय है, लेकिन रूल के मुताबिक या रूल 21 के खिलाफ ये जरूर है।
तो ऐसा कह सकते हैं कि सेना प्रमुख ने रूल के खिलाफ जाके बयान दिया है?
जी हाँ।
तो क्या आप सेना को इतने अच्छे से समझते हैं सर, तो आप क्या कहेंगे, क्या आर्मी चीफ को देश के किसी मुद्दे पे क्या कोई राय नहीं हो सकती या वो अपनी राय नहीं रख सकते?
ये आर्मी के हर इंसान के सबसे जूनियर जवान से लेकर आर्मी चीफ तक आर्मी रूल 19 के तहत फंडामेंटल राइट्स उनके कर्टेल किए गए हैं या कुछ हद तक रोके गए हैं, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है जो कि बाकी हर नागरिक आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंजॉय करता है, ये आर्मी के लोगों को डिनाई किया गया है आर्मी रूल 19 के तहत। ये कोई नई बात नहीं है, ये आर्मी के हर इंसान को पता है और वो उनको बताया जाता है और हर साल जो है दोहराया जाता है। तो ये कहना कि आर्मी चीफ एक नागरिक है और नागरिक होने के नाते उनको क्यों नहीं बयान देने का मौका दिया जाता है, इसका जवाब ये है कि वो एक आम नागरिक नहीं है, वो मिलिट्री के एक मेंबर हैं और मिलिट्री के सारे मेंबर्स को आर्मी रूल 19 के तहत उनके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किए गए हैं। बात ऐसी है कि एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है ये देश, और आर्मी एक स्टेबिलिटी का इंस्टीट्यूशन है, देश का क्या का लास्ट रिजॉर्ट बताया जाता है, जब सब कुछ, जब और कुछ नहीं या और कोई रास्ता नहीं है देश के पास तो उसकी आर्मी है, और जब आर्मी पॉलिटिकल सवालों के ऊपर बयान देना शुरू करती है तो उसके इम्पार्शियलिटी के ऊपर सवाल जोड़े जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात नहीं है। आर्मी को पॉलिटिकल सवालों से दूर रहना चाहिए, आर्मी चीफ को पॉलिटिकल सवालों से दूर रहना चाहिए।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों पर बोले जनरल बिपिन रावत, अधिक जानकारी दे रहे थे रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला। वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। बीबीसी हिंदी के इस वीडियो में हमने असम में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की पड़ताल की थी। हमारे सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा की इस रिपोर्ट में असम के माटिया में बन रहे डिटेंशन सेंटर के बारे में बताया गया था, जिसे राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। इस रिपोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता शाहजहां अली और दिलीप कुमार शर्मा ने क्या बताया था, सुनिए।
टीवी पे देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है कि इंडिया में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, तो इसलिए मैं फिर से देखने के लिए आया कि सच में डिटेंशन है या नहीं है। तो आगे देखा नहीं है, यहाँ पर तो है डिटेंशन सेंटर, और जो डिटेंशन सेंटर 46 करोड़ रुपया खर्चा करके भारत सरकार बना रहा है, तो मोदी जी मुझे लगता है बहुत बड़ा एक झूठ बात यहाँ पर बोल दिया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए 40 करोड़ रुपये यहाँ खर्च कर रहा है, और दास कहते हैं कि इसकी वैसे तो डेडलाइन 31 दिसंबर की थी, लेकिन अभी केवल 70% काम ही पूरा हुआ है, जिसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 मार्च 2020 तक इस डिटेंशन सेंटर का काम पूरा कर लिया जाएगा। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी, माटिया, असम।
22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट में हमने देखा कि असम में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी की भाषा आपत्तिजनक है और उनसे भद्रता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई झूठ नहीं बोला था, और अवैध घुसपैठियों के लिए 2011 में कांग्रेस सरकार ने असम में 3 डिटेंशन सेंटर बनाए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के रामलीला मैदान वाले बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा,
प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनआरसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसा डिटेंशन कैंप नहीं बनाया है जिसमें एनआरसी के बाद किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान को रख दिया जाएगा या डिटेन किया जाएगा।
इसके अलावा विपक्ष राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार एनपीआर इसलिए ला रही है ताकि एनआरसी किया जा सके। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि एनपीआर 2010 में यूपीए सरकार ने शुरू किया था। आज कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपीए सरकार के समय किए गए एनपीआर में मामूली जानकारियां मांगी गई थी, जबकि इस बार के एनपीआर में माँ बाप के जन्म स्थान के साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारियां भी मांगी जा रही है। उन्होंने
यानी अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं कहीं पे, तो उनकी डिटेल दी जाए, पैदा हुए, और अगर आपके पेरेंट्स हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुए हैं तो किस देश के अंदर पैदा हुए हैं उसके बारे में बताया जाए। मुझे बताएं कि यूजुअल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में कहां पे लिखा हुआ है कि इस चीज को असर्टेन करना है? कहां पर यूजुअल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में यह कहा गया कि इस चीज को? तो ये प्रीटेस्ट के फॉर्म में भी क्यों आया? क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है।
बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सामाजिक कार्यकर्ताओं की इस कमेटी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुई पुलिस कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया है कि लोगों के खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा मौजूद रहे, उनसे हमने बात की।
देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से दो भागों में बटी हुई थी। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें योगेंद्र यादव, नदीम खान, कविता कृष्णन और हरीश मंदर थे, जिन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो लेके आए यूपी में जिस तरीके की हिंसा हमें देखने को मिली है, वहाँ उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की है और वहाँ जाकर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसका इन्होंने ब्यौरा आज दिया। और सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, कविता कृष्णन ने, नदीम खान ने, हरीश मंदर ने और योगेंद्र यादव ने फिर अपना जो रिपोर्ट है वो साझा करते हुए ये बताया कि क्या मांगे हैं उनकी, सरकार से क्या मांगे हैं, जुडिशरी से क्या मांगे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी की जाए। और जो इंक्वायरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर हम कहें कि सेंट्रल थीम, वो ये थी कि पुलिस पे भरोसा नहीं है उनको, सरकार पे भरोसा नहीं है, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं।
तो इन्होंने कुछ फैक्ट्स भी रखे हैं, किस तरीके की फैक्ट फाइंडिंग थी, क्या आपकी बात हुई इन लोगों से?
जी हाँ, देखिए, उनका दावा ये है कि एक बर्बरता वाला बहुत ही क्रूर तरीके से पुलिस का व्यवहार था। अगर ये जो फैक्ट फाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, जो इनके आरोप हैं, हालांकि मैंने ये सवाल कविता कृष्णन से पूछा जब मैंने उनसे इंटरव्यू की कि किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि ये क्रूरता थी या पुलिस की एट्रोसिटीज थी, तो उनका ये कहना था,
हम लोग जो कल मेरठ गए तो उसका बेसिस तो हमें वहीं पर मिला जहां पर हमें इस तरह के इंजरीज की एविडेंस मिली, और हमें ये भी पता चला कि जो 6 लोग मारे गए हैं मेरठ में, उसमें से ज़्यादातर लोग तो प्रदर्शनकारी भी नहीं थे, वो तो बिल्कुल डेली वेज लेबरर्स थे, बेहद गरीब।
तो ये थी कविता कृष्णन, जैसे आपने सुना। इसके अलावा योगेंद्र यादव ने हमें ये बताया कि अगर प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि NRC को लागू नहीं किया जा रहा है तो मामला काफ़ी हद तक शांत हो सकता है। इसके बारे में मैंने सवाल किए, और दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 भाग थे, दूसरे भाग में बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर और जीशान अयूब ये पहुंचे, और इन्होंने भी इसी तरीके के एक एलिगेशन लगाए और कहा कि पुलिस और सरकार अगर इस तरह का व्यवहार करेगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो यही सवाल मैंने स्वरा भास्कर से भी किया और उनका ये कहना था,
उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उसने एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, एक खास समुदाय मुसलमान समुदाय के जो नागरिक हैं, उन पे ऐसा लग रहा है कि एक किस्म से एक जंग छेड़ दी है। उनकी अपनी परिभाषा के अनुसार वो बदले की भावना से अब काम कर रहे हैं, वो जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो बहुत ही गंभीर वीडियोज़ हैं।
तो ये थी स्वरा भास्कर, जैसे आपने सुना, और मेनली इनका यही कहना है कि किसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आए और NRC को लागू ना किया जाए, ये इनका कहना था। हालांकि मैंने उनको कहा कि प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि NRC लागू नहीं किया जा रहा, इस पर उनका ये कहना था कि इससे सिर्फ कन्फ्यूजन है, कभी कुछ प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, होम मिनिस्टर कुछ कहते हैं।
तो ये लोग क्या आगे भी कोई प्रदर्शन जारी रखेंगे? क्या इन्होंने कुछ अपनी थीम बताई है कि किस तरीके की इनकी कोई योजना है आगे के लिए?
इस तरह का ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन यही कहना था कि हम जांच चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ये साफ करें कि हम NRC को अभी लागू नहीं कर रहे हैं।
नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। अधिक जानकारियां दे रहे थे BBC संवाददाता अरविंद छाबड़ा।
BBC हिंदी रेडियो का दिन भर कार्यक्रम आप 25, 31 और 49 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर भारतीय समय के मुताबिक रोजाना शाम 7:30 से 8 बजे तक सुन सकते हैं। हमारे सभी रेडियो कार्यक्रम आप bbchindi.com पर लाइव भी सुन सकते हैं।
अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां प्रशासन ने बीते शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिंसा में शामिल रहे संदिग्ध लोगों को वसूली के नोटिस भेजे हैं। पुलिस ने कई शहरों के चौराहों पर हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर भी लगाए हैं। सुनिए BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा की ये खास रिपोर्ट।
नागरिकता संशोधन कानून के दौरान हुए प्रदर्शन में हुए संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 400 लोगों को संपत्ति जब्त का नोटिस दिया गया है। सबसे ज्यादा 200 लोगों को मुरादाबाद में, 110 लोगों को लखनऊ में, 34 लोगों को गोरखपुर में, 29 को फिरोजाबाद में और 28 लोगों को रामपुर में नोटिस जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 1113 लोगों को दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि जिन्हें नोटिस भेजा गया है उनकी पहचान वीडियो के आधार पर की गई है।
पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के थ्रू, और जिन लोगों को वहां मौके से अरेस्ट किया गया या जिन लोगों के तथ्य पाए गए हैं कि उन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है 21 दिसंबर को, उन सारे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम पुलिस की तरफ से भेजा गया। एक असेसमेंट भी भेजा गया है कि कितना नुकसान हुआ है, तो इसके आधार पर जो उसके प्राधिकारी हैं ADM फाइनेंस, उन्होंने नोटिस इन सारे लोगों को भेजा है जिन 28 लोगों को चिन्हित करके पुलिस के द्वारा भेजा गया है, और जो रकम भेजी गई है कि इतने का नुकसान हुआ है उसकी वेरिफिकेशन के लिए संबंधित विभागों को भी नोटिस जारी की गई है। उनको जवाब का मौका दिया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी ताकि उनसे वो उसकी रिकवरी कराई जा सके।
बुधवार शाम को रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में जब पुलिस संदिग्ध इस्लाम के घर नोटिस देने पहुंची तो परिवार ने उन्हें बेगुनाह बताते हुए नोटिस लेने से इनकार कर दिया।
जब दंगा करा नहीं, क्यों साइन करेंगे फिर?
इस्लाम के परिवार का कहना है कि उन्हें गलत फंसाया गया है।
दूध बेचने वाला दंगे का काम करेगा, ये दंगा करेगा, ये पुलिस नाजायज दबा रही है और पुलिस सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पुलिस
इस्लाम फिलहाल जेल में हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि अब उनके लिए बच्चों का पेट भरना मुश्किल होगा।
पता ही नहीं कि किस मामले में क्या करा क्या नहीं करा। फिर नोटिस भेज दिया कि तोड़फोड़ का जरिमाने के पैसे दो, नहीं तो उनके ऊपर केस लगा देंगे, ये कर देंगे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों का क्या करें, इन बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएंगे बताइए। घर देंगे कहाँ से जरिमाना भरेंगे, ये बताओ जरिमाना भरेंगे, खाने के सुला ले।
वहीं इसी इलाके के पप्पू नाम के एक मजदूर को भी पुलिस ने वसूली का नोटिस दिया है। उनके भाई नदीम ने बीबीसी को बताया है कि ना ही तो वो प्रदर्शन में शामिल थे और ना ही हिंसा में। पुलिस बेवजह उन्हें घर से उठाकर ले गई।
इसका ये तो कहना है, मतलब ये तो उनके पावर है, इस टाइम हर चीज है, वो तो कुछ भी कह सकते। गरीब आदमी हर जगह दबता ही है, कहां से आवाज उठाएगा। घर से उठा के ले, मार तो ले गए यार, उनके चप्पले भी नहीं पहनाए और ऐसी ठंड में ले गए।
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता फैसल लाला ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
प्रशासन को ये भी बताना चाहिए कि इससे पहले जहां जहां इस तरीके के उपद्रव हुए हैं वहां किन किन से रिकवरी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही प्रशासन को ये भी बताना चाहिए कि मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे वहां पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था तो उनमें किन किन लोगों से सरकार ने रिकवरी की थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ये रिकवरी के नोटिस दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को रिकवरी के लिए नोटिस नहीं दिया जाए जिनके पास अपना मकान तक नहीं हो।
इसी बीच यूपी पुलिस ने प्रदेश के कई जिलों में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा की जांच के लिए SIT गठित करने के आदेश दे दिए हैं। दिलनवाज पाशा, BBC दिल्ली।
श्रोताओं, आज गुरुवार है और आज वो समय होता है जब हम आपकी राय के बारे में जानते हैं। आज आपकी चिट्ठियों के बारे में बता रहे हैं BBC हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी।
आपकी राय। दोस्तों नमस्कार, आज आपकी राय के साथ मैं राजेश जोशी हाजिर हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि चिट्ठियाँ आपकी पढ़नी है, जवाब कुछ नहीं देना है क्योंकि जवाब दिया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश से अकान रेगोन लिखते हैं, अंग्रेजी में उन्होंने चिट्ठी लिखी है। लिखते हैं कि मैं बचपन से BBC हिंदी रेडियो सुनता आ रहा हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन के आखिरी बरस में हूँ और जब मेरी परीक्षा हुई तो मैंने सिलेबस से बाहर के सवालों के जवाब भी दिए। इसके लिए मैं BBC हिंदी का शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं BBC हिंदी रेडियो सुनता रहा हूं। अब वो ये कहते हैं कि जब BBC रेडियो बंद हो जाएगा तो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो जाएगा। दूसरी चिट्ठी है बाड़मेर राजस्थान से, इब्राहिम खान गगरिया गांव से लिखते हैं। ये लिखते हैं, जब से मैंने होश संभाला है तभी से BBC हिंदी के कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी पिछले 45 साल से BBC हिंदी के सभी रेडियो कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं क्योंकि मैं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र का रहने वाला हूँ जहाँ पर बिजली इंटरनेट सुविधाएं पिछले 7 साल से ही चल रही हैं। फिर भी मेरे पिताजी अब भी रेडियो ही सुनते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया BBC रेडियो के कार्यक्रम बंद ना करें, चाहे दिन में एक बार ही अपना कार्यक्रम चलाएं। और ये अगली चिट्ठी है गुड्डू गौतम की, मोतिहारी बिहार से। लिखते हैं, BBC रेडियो कार्यक्रम के बिना BBC का अस्तित्व नहीं रहेगा, BBC अपना अस्तित्व खो देगी। ये राय है गुड्डू गौतम की, मोतिहारी बिहार से। और ये अगली चिट्ठी है शारदा प्रसाद की, जिन्होंने ग्राम भद्यूठी जिला नैनीताल उत्तराखंड से लिखा है। लिखते हैं कि मैं सुबह और शाम की आपकी जो सभाएं हैं उनको लगातार सुनता हूं, ये मेरे जीवन की दैनिक आवश्यकताएं हैं। आगे लिखते हैं, हम जैसे आम नागरिकों के लिए दूर दराज के पहाड़ी इलाके में जहां आज भी मोबाइल सिग्नल पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होता है, वहां BBC का रेडियो प्रसारण ही सबसे उपयुक्त, सटीक, भरोसेमंद और सस्ता समाचार माध्यम है जो देश और संसार की खबरों से हमें जोड़ा रहता है। लेकिन वो भी अब बंद होने जा रहा है, अतः आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप इन सभी कार्यक्रमों को ऐसे ही चलने दें। कालू खान लोहार जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। जब 11 साल का था तब से BBC हिंदी का प्रशंसक रहा हूं। मेरे दादाजी रेडियो पर BBC हिंदी सुनते थे। कई साल बीत गए, कई समाचार प्लेटफॉर्म पेश किए गए, लेकिन BBC का एक अनूठा आकर्षण है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया अपने सभी प्रशंसकों जैसे वरिष्ठ नागरिकों की, ग्रामीणों की और उन सभी लोगों की गुजारिश पर पुनर्विचार करें जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अगला ईमेल आया है सुधीर का, दिल्ली से लिखते हैं। अंग्रेजी में इन्होंने भी लिखा है कि मैं चकित हूं कि BBC हिंदी सेवा रेडियो कार्यक्रम बंद कर रही है। मैं BBC से 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से जुड़ा रहा हूं और जो मेरा करियर बना है उसके लिए BBC हिंदी ही काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। आगे लिखते हैं कि मैं BBC मैनेजमेंट से प्रार्थना करता हूं कि अपने इस फैसले को बदलें और कार्यक्रम को जस का तस जारी रखें। अगला ईमेल है मंजू शर्मा का, ग्राम लोहा रतनगढ़ से लिखती हैं। बहुत दुखी हूँ ये जानकर कि बीबीसी हिंदी रेडियो प्रसारण सेवा बंद हो रही है। बरसों से बीबीसी हिंदी सेवा लोगों तक सही और सच्ची जानकारी और समाचार पहुंचा रही है, लेकिन बीबीसी के बंद होने से अब ये संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि समाचार पत्र और टीवी चैनल जिस तरह से खबरों का प्रसारण कर रहे हैं उसमें सही क्या है, गलत क्या है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कृपया बीबीसी का हिंदी प्रसारण सेवा जारी रखें, चाहे इंटरनेट पर ही रखें, लेकिन ये इंटरनेट सरकार की मंशा पर ही निर्भर रहता है, इसका ध्यान रखें। अगली चिट्ठी है कुवैत से। मोहम्मद अमीरुद्दीन ने लिखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बीबीसी हिंदी रेडियो हमसे बेवफाई करने वाला है, जबकि इस वक्त भारत में आपकी बेहद ज़रूरत है। कह दो ना कि ये सब झूठ है, ये इनकी गुजारिश है, कह दो ना कि सब झूठ है। आगे लिखते हैं, बीबीसी हिंदी रेडियो हमारे लिए दवा की तरह काम करता है, उसी तरह हमें उसकी आदत हो गई है, इसे बंद ना करें। एक और ईमेल आया है राजीव प्रताप का, औरंगाबाद से, बिहार से। लिखते हैं, सवाल पूछते हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप बीबीसी का हिंदी प्रसारण बंद करने जा रहे हैं? अरे भाई, इसके पहले आपने सोचा उन श्रोताओं का क्या होगा जिनके दिन की शुरुआत ही 1976 से सुबह 6:30 बजे के बीबीसी कार्यक्रम सुनकर ही होता आया है? आप इस कार्यक्रम को हठात कैसे बंद कर सकते हैं? आग्रह है इस निर्णय पर आप पुनर्विचार करेंगे। ऐसी ही एक चिट्ठी आई है गुरिंदरजीत सिंह की, गांव कोकलपुर, पोस्ट ऑफिस कांजील, तहसील है कपूरथला, पंजाब से लिखते हैं। इन्होंने भी कहा है कि नमस्कार भारत, और दिन भर में लगातार सुनता आ रहा हूं और श्रोताओं की आपसे विनती है कि इस सर्विस को आप बंद ना करें। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारी चिट्ठियां हमारे पास आई हुई हैं जिसमें कार्यक्रमों के बारे में टिप्पणी की गई है, अपनी राय जाहिर की है आप लोगों ने, लेकिन आज चूंकि हमने बीबीसी श्रोताओं की सिर्फ उन्हीं राय वाली चिट्ठियों को लिया है जो बीबीसी के कार्यक्रम बंद होने के सिलसिले में हमारे पास आई हैं, इसलिए उन्हीं चिट्ठियों को मैं शामिल करके आपसे इजाज़त चाहता हूं। चलते चलते पता बता दूं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल तुरंत लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर। नमस्कार। आपकी चिट्ठियों को पढ़ रहे थे बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी, और अब समय है खेल समाचारों का। खेल समाचारों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है इंदु पांडे।
तो खेल समाचारों में शुरुआत करते हैं टेनिस से। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, जैसा कि आपने सुना होगा। और 46 वर्षीय पेस ने कल ये जानकारी देते हुए बताया कि 2020 उनकी करियर का आखिरी साल होगा।
फाइनली, यानी कि लिएंडर पेस कह रहे हैं कि वो अब आगे नहीं खेलेंगे।
जी, उन्होंने अलविदा कहा। और 1996 ओलंपिक में एकल में पदक जीत चुके पेस ने सोशल मीडिया पर सभी को क्रिसमस की बधाई देते हुए अपने इस संन्यास की जानकारी दी थी। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि चुनिंदा टूर्नामेंट खेलेंगे और टीम के साथ यात्रा करेंगे, दुनिया भर में अपने दोस्तों और प्रशंसकों के साथ जश्न मनाएंगे।
टेनिस का एक दिग्गज खिलाड़ी, वाकई।
और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन क्रिकेट अल्मानेक ने 4 अन्य के साथ दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है। कोहली के अलावा दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और एबी डिविलियर्स भी, और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और महिला क्रिकेट की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी भी इस सूची में शामिल है।
ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के 2 खिलाड़ी हैं, भारत का सिर्फ 1 खिलाड़ी है।
तो विराट कोहली के नाम तो अभी ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कई सारे टूर्नामेंट हो सकता है कि वो नए रिकॉर्ड बनाएं, क्योंकि इस 31 वर्षीय बल्लेबाज को दशक की विजडन टेस्ट टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया, जबकि वो एक दिवसीय टीम में भी शामिल हैं।
भारत के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़े गौरव की बात। खेल समाचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदु पांडे। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
कीर्ति दुबे से। भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि नेता वो होते हैं जो सही दिशा में लोगों का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट जिस तरह से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे शहरों में हिंसा और आगजनी बढ़ रही है। भारत समेत एशिया में आज साल 2019 का आखिरी सूर्यग्रहण देखा गया। पृथ्वी के काफ़ी बड़े हिस्से में साफ दिखने के कारण इसे सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण भी कहा गया। अगला सूर्यग्रहण 21 जून 2020 को होगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू आज अपनी पार्टी के आंतरिक चुनावों का सामना कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से वो लिक्विड पार्टी के शीर्ष पर थे। पार्टी के अंदर उनके प्रतिद्वंदी गिदोन सार से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। फिलीपींस के प्रशासक का कहना है कि चक्रवाती तूफान फनफोन के कारण कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए हैं। देश में इस तूफान के कारण भारी तबाही मची हुई है। पीबीसी समाचार।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। आपसे अब अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com। स्टूडियो से कीर्ति दुबे, इंदु पांडे और मुझे यानी मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।